सत्रह ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, मेरा भी यही मन कर रहा था पहनने का, अच्छा हुआ आपने भी यही चुना, अब मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। इतना बोलकर नंदिनी ने उदय के हाथ में पकड़े हुए कपड़े को लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। उसने सोफे पर बिखरे हुए बाकी सारे कपड़ों को उठाया और अलमारी में रख दिया। वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठते हुए बोली, अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अब हम आराम से सो सकते हैं। इतना बोलकर नंदिनी बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसे इस तरह लेटते देखकर उदय उसके पास आकर बोला, इतनी जल्दी आप सोने भी चली गईं, हमें हमारा टाइम कब मिलेगा? नंदिनी उदय की बात सुनकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, आपका टाइम? अब कोई टाइम नहीं, अब तो वैसे भी सोने का टाइम हो रहा है, इसलिए आप भी सो जाइए। उदय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है, हमें तो आपके साथ रोमांस करना है। इतना बोलकर उदय नंदिनी के बिल्कुल नज़दीक आया और उसने नंदिनी की कमर में हाथ डालकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, हमने आपकी ड्रेस चुनने में आपको इसीलिए जल्दी से हेल्प की ताकि हम आपके साथ रोमांस कर पाएं, और आप हैं कि अब सोने जा रही हैं। नंदिनी ने उदय के मासूम से चेहरे की तरफ देखा और उदय के गाल पर अपना हाथ रगड़ते हुए बोली, हाँ रोमांस तो मुझे भी करना था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, इप्सिता आ रही है और मम्मी जी ने पहले ही कहा है कि किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मम्मी जी ने मुझे पहली बार कोई काम दिया है और मैं नहीं चाहती कि मैं वो काम गलत करूं और फिर मम्मी जी नाराज़ हो जाएं। उदय ने नंदिनी की ये बात सुनी और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं होंगी मम्मी नाराज़, आप क्यों परेशान हो रही हैं। इतना बोलकर उदय नंदिनी को किस करने के लिए आगे बढ़ा और नंदिनी ने उदय के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, नहीं आज नहीं। उदय ने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया और चुपचाप मुंह घुमाकर लेट गया। तभी नंदिनी ने उदय की कमर में अपना हाथ डाला और उसकी पीठ पर अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, कोई मुझसे नाराज हो गया है क्या? उदय ने नंदिनी की बात सुनी और केवल सिर हिला दिया। नंदिनी बेड से उठी और उदय का चेहरा घुमाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाकर लेटा हुआ था। नंदिनी ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बेड से उठकर उदय के ऊपर आकर लेट गई। उसने उदय के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है कि आप हमसे नाराज हों, मैं आपको नाराज होने ही नहीं दूंगी। इतना बोलकर नंदिनी ने उदय के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और उसके होठों पर किस करने लगी। उदय ने नंदिनी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे किस करने में उसका साथ देने लगा। तभी नंदिनी ने उदय के कान के पास जाकर कहा, सो जाएं, बाकी का रोमांस बाद में करेंगे। इतना बोलकर नंदिनी ने उदय के गाल पर किस किया और उसके सीने पर ही सिर रखकर यूं ही लेटी लेटी सो गई। उदय ने भी नंदिनी को अपने ऊपर से नहीं हटाया, बल्कि छोटे बच्चे की तरह उसे कसकर पकड़ लिया। उसने अपने और नंदिनी के ऊपर ब्लैंकेट डाला और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में वे दोनों ही सो गए। अगले दिन सुबह राजमहल में अभिमन्यु और इप्सिता के जाने की तैयारी चल रही थी। वे दोनों तैयार होकर सीधे अपने रूम से बाहर निकले। मासा वहीं अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। अभिमन्यु और इप्सिता वहां पर आकर रुके। मासा ने उन दोनों की तरफ नज़र उठाकर देखा और कुछ भी नहीं कहा। तभी अभिमन्यु मासा से कुछ बोलने जा ही रहा था कि समर्थ वहां पर आया और उसने कहा, सब कुछ रेडी है? अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखा और तभी उसकी नज़र नरेंद्र चाचा पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। समर्थ अभिमन्यु के पास आकर बोला, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ साइड में ले जाते हुए बोला, समर्थ हमें अब चाची सा और चाचा सा पर जरा भी भरोसा नहीं है, और हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि चाचा चाची कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगे। हम उनको अभी डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमारे यहाँ से चले जाने के बाद तुम उन पर नज़र रखना। समर्थ ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम भी फिक्र रहो, मैं हूँ यहाँ पर। इतना बोलकर समर्थ ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ थपथपाया। तभी अभिमन्यु की नज़र मासा पर गई और उसने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा कभी ध्यान रखना। समर्थ ने अभिमन्यु को बोलते हुए देखकर कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जाओ। अभिमन्यु मासा के पास आया और उसने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा हम चलते हैं। मासा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा। वे दोनों सीधे कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने अभिमन्यु के इशारे पर कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, हमें पता नहीं क्यों चाचा सा चाची सा को देखकर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अभिमन्यु ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इप्सिता पर गई, जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है इप्सिता, क्या सोच रही हैं आप? इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। इप्सिता काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, तो अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और इप्सिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तभी इप्सिता का फ़ोन बजा। उसने जैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें नंदिनी का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ हेलो नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी ने कहा, यार यीशु, कहाँ है तू? कितना टाइम लगा रही है? मैंने तो सोचा था कि सुबह सुबह ही आ जाएगी, लेकिन अब तो देख दोपहर होने को आ गई है, और कितनी देर लगाएगी? इप्सिता ने कहा, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, घर से निकल गए हैं। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, जल्दी आ जा, हम सब यहाँ पर तेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने कॉल कर दिया। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और उसने कहा, क्या हुआ, क्या कह रही थी नंदिनी? अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए इप्सिता ने कहा, नंदिनी यही पूछ रही थी कि और कितनी देर लगेगी हमें वहां पहुंचने में। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, नंदिनी शायद आपसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हैं। इप्सिता उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और वापस बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी कार सीधे सूर्यवंशी हवेली के सामने रुकी। जैसे ही कार रुकी तो नंदिनी और उदय ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मम्मी पापा, इप्सिता आ गई। उसकी ये बात सुनते ही सब लोग हवेली के गेट के पास आकर खड़े हो गए। उदय और नंदिनी भागते हुए बाहर की तरफ गए। तब तक इप्सिता अभिमन्यु के साथ कार से बाहर निकल आई थी। जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता को देखा तो उसने जल्दी से इप्सिता को हक करते हुए कहा, वाह क्या बात है, तुम्हारे ऊपर ये रेड कलर की साड़ी बड़ी ही सूट कर रही है, बहुत प्यारी लग रही हो। नंदिनी ने इप्सिता की तारीफ की और इप्सिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं उदय अभिमन्यु के गले लगाते हुए बोला, आइए अभिमन्यु, वैसे अब तो हमें आपको जमाईसा कहना चाहिए, है ना? अभिमन्यु ने उदय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं उदय, कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमें हमारा नाम लेकर ही बुलाएं तो वही अच्छा है। अभिमन्यु और उदय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उदय ने कहा, ठीक है चलिए अंदर चलते हैं।
इतना बोलकर वे चारों सामने दहलीज पर आकर रुक गए। सामने इप्सिता की मम्मी हाथ में पूजा की थाल लेकर खड़ी थी और वहीं उनके बगल में इप्सिता के पापा खड़े थे। इप्सिता ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो इप्सिता का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर इप्सिता की मम्मी और पापा समझ गए कि इप्सिता अभी भी उनसे नाराज है, लेकिन उन्होंने इस टाइम कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की आरती की। उन दोनों को तिलक लगाते हुए इप्सिता की मम्मी ने कहा, आइए जमाईसा, इप्सिता बेटा अंदर आओ। इप्सिता अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा, वो अंदर की तरफ आ रहा था। इप्सिता अभी भी वहीं खड़ी थी। तभी उदय और नंदिनी इप्सिता के बगल में आकर खड़े हुए। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा ही घर है, अंदर नहीं चलोगी? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो दहलीज को पार करते हुए अंदर आई। इप्सिता को अंदर आते देखकर इप्सिता के मम्मी पापा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वे लोग जैसे ही हॉल में पहुंचे तो वहीं हॉल में इप्सिता की नज़र नंदिनी की मॉम पर गई। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे आंटी कैसी हैं आप, सॉरी वहां पर रिसेप्शन में तो हमें आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला।